आज जो कुछ चीजों के बारे में हम कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ये अनंत महासागर है एक एक श्लोक। और ये जो हम कुछ चर्चा करेंगे, ये इस सीरीज के अंदर इस टाइप की पहली चर्चा होगी। और कृष्ण कृपा रही तो इस प्रकार की इसी सीरीज में कई चर्चाएं होंगी, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के लिए जो खुश रहना चाहता है। भगवद गीता का श्लोक है 18वें अध्याय का 63वां श्लोक। इति ज्ञानम आख्यातम गोया गोयतरम मया विमृश्य एतद् अशेषेना यथा इच्छसि तथा कुरु। इति ज्ञानम आख्यातम गोया गोयतरम मया विमृश्य एतद् अशेषेना यथा इच्छसि तथा कुरु। इति ज्ञानम आख्यातम गोया गोयतरम मया विमृश्य एतद् अशेषेना यथा इच्छसि तथा कुरु। भगवान कहते हैं, अब मैंने आपको वो ज्ञान दिया है जो सबसे गुह्यतम है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। विमृश्य एतद् अशेषेना, विमृश्य इस पे अच्छी तरह विचार करो, एतद् इस पे अशेषेना, शेष होता है कुछ शेष ना रह जाए, इस पे इस हद तक विचार करो कुछ शेष ना रह जाए, अच्छी तरह विचार करो। विमृश्य एतद् अशेषेना, पूर्ण जो मैंने बताया है, डिलीबरेट ऑन दिस फुली, अच्छी तरह इसके ऊपर विचार करो। और फिर भी भगवान कह रहे हैं यथा इच्छति तथा करो, फिर भी वही करो जो तुम्हारी इच्छा हो। कितनी गहरी बात है कि भगवान ने सब कुछ बता दिया है, भगवान परफेक्ट हैं, कंप्लीट हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं वो भी कंप्लीट है, परफेक्ट है। परफेक्ट ज्ञान देने के बाद भी भगवान क्या कह रहे हैं कि विमृश्य एतद् अशेषेना, मैंने परफेक्ट ज्ञान दिया है उसके बाद भी तुम इस पे पूर्ण मनन करो, अच्छी तरह सोचो जो मैंने बोला है, और उसके बाद भी तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। तो हम ये देख रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि किसी भी स्थिति में भगवान फोर्स नहीं कर रहे किसी को, कि भगवान किसी जीव के शूद्र स्वतंत्रता में बाधक नहीं पड़ते, कभी इंटरफेयर नहीं करते किसी भी जीव की स्वतंत्रता में। क्योंकि हम सब भक्तों के लिए बहुत जरूरी है ये प्रचार के अंदर, ये हमें ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो हम प्रचार करते हुए काफी फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, और निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में भी ये बोलना भी कम है प्रचार। या वास्तव में ये जो कुछ श्लोक है 247, 1863, 411, ये सब इसके बगैर तो व्यक्ति खुश हो ही नहीं सकता, कोई भी स्कोप नहीं है, असंभव है। भगवान पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपकी जो इच्छा हो आप करो। हमारे इस भौतिक जीवन में हम क्या देखते हैं, हम किसी को कोई बात बताते हैं, पहली बात तो परफेक्ट होती भी नहीं है, उसके बावजूद भी हम क्या चाहते हैं, जो मैं चाहता हूँ वो तुम करो, यही होता है कि नहीं हमारे जीवन में। माँ बाप बच्चों से चाहते हैं जो मैं बोल रहा हूँ तुम वही करो, चाहे मैं सही बोल रहा हूँ गलत है उससे कोई मतलब नहीं है, पर जो मैं बोल रहा हूँ वही होना चाहिए। भगवान परम पिता है, परम पिता, परम पिता होने के बाद भी वो ये नहीं कह रहे कि मेरी बात तो तुमको मानना ही पड़ेगा, परंतु हम छोटे से पिता हैं, दो चार लोगों के पिता हैं और उन्हीं के ऊपर हम इतना प्रभुत्व जमाते हैं माँ बाप होने के कारण, ये हम कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें करना ही पड़ेगा, और जो मैं ये भी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, उसमें लगभग चांस है गलत ही होगा, क्योंकि हम सही रूप से एकदम दिव्य ज्ञान को अनुभूति हमारे कोई अनुभूति नहीं है और समझ भी नहीं पाए हैं, तो हमारे को सीखना चाहिए। होता क्या है, हम सीखते नहीं है जीवन में, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं परंतु दिल काले का काला रहता है, काला मतलब अज्ञान, अज्ञान में, अंधकार में रहता है दिल, हृदय, अंतःकरण। वी फॉरगेट लर्निंग, है कि नहीं, हम सब सीखना भूल जाते हैं, वी फॉरगेट लर्निंग, रादर वी शुड लर्न फॉरगेटिंग, वी फॉरगेट लर्निंग, हम सीखना भूल जाते हैं और करना उल्टा चाहिए, हमको माफी करना वो सीखना चाहिए, भूल जाना चाहिए, माफ करना चाहिए, और ये दोनों चीजें नहीं करते हैं इससे दुखी रहते हैं। ये भगवद गीता जो हमने बताया एबीसी है स्पिरिचुअल लाइफ की। गीता के अंदर आपने पढ़ा होगा मनुष्य नाम श्रेष्ठ कश्चित यतति सिद्ध है यतताम सिद्ध नाम कश्चन मामी तत्व, मनुष्य नाम श्रेष्ठ, पहली बात तो कोई हजारों हजारों में से कोई एक व्यक्ति है जो कृष्ण भावना भावित होने की कोशिश करता है, और उनमें से कोई विरला ही व्यक्ति होता है जो सही में कृष्ण भावना भावित ढंग से हो पाता है। बहुत विरला व्यक्ति होता है, मतलब भक्ति करने की कोशिश काफी लोग करते हैं, पर कोई बहुत ही विरला होता है जो वास्तव में खुश आनंद में रह पाता है, आनंद में खुशी में रह पाता है हर समय। सामान्यतः हमारी भक्तों की हालत ऐसी होती है कि हम कड़छी की तरह होते हैं, जो कि सब्जी के अंदर डाली बाल्टी में डाली हुई है, तो कड़छी बाल्टी में हर समय है, उसका स्वाद अनुभव नहीं करती है। हमारा भी हम कृष्ण के साथ कोई ना कोई हमारे कृष्ण कौन से कुछ ना कोई संबंध चल रहा है हमारा, पर वो अनुभूति हमें नहीं होती आनंद की। तो हमें जीवन भर एक कड़छी की तरह बन के नहीं रहना है कि बाहर ऐसे ही रहे, हमको अच्छी तरह समझना है इन चीजों को। हम लोगों की यही परिस्थिति, जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं खुश नहीं रह सकता, जब तक यहाँ तक नहीं पहुंचूंगा मैं खुश नहीं रह सकता। सुखी होने के लिए पता नहीं कितने 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 प्रकार से दुखी होते हैं। आशा क्या होती है, हम सुखी रहना चाहते हैं, परंतु उसी के चाह में हम कितने कितने प्रकार से दुखी होते हैं, आश्चर्य है कि नहीं। हम सुखी होने के लिए कितने प्रकार से दुखी होते हैं, कारण क्या है कि हम ये मान बैठे जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। बस ये बॉटम लाइन है, ये चीज को होना ही पड़ेगा, जो मैंने सोचा है ये चीज होनी ही चाहिए, तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। ये माया का एक तरीका होता है। माया क्या तरीका है, हमेशा बस ये कर लो और तुम खुश हो जाओगे, बस तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी बात मान ली तो तुम बिल्कुल खुश हो जाओगे, बस तुम्हें ये वस्तु प्राप्त हो गई तो तुम बिल्कुल खुश हो जाओगे। खुश होना मतलब कृष्णा कॉन्शियस होना है, खुश होना मतलब आनंदमय होना, आनंदमय मतलब कृष्णमय होना। तो अगर आपको आपके लड़के ने आपकी बात मान ली तो आप खुश कैसे हो सकते हो बताओ, कृष्णमय कैसे हो सकते हो अगर आपके लड़के ने आपकी बात मान ली, या आपको BMW गाड़ी मिल गई, या आपकी फैक्ट्री 5 करोड़ की हो गई, उससे आप खुश कैसे हो गए आप बताओ। आनंद कृष्णमय होना, इसको खुशी कहते हैं। आनंद खुशी पीस हैप्पीनेस जो है ये परिस्थिति जन्य नहीं है, ना वस्तु जन्य है कि आपको किसी वस्तु के प्राप्ति के बाद ही खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कोई परिस्थिति हो जाएगी तो आपको खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं है। आनंद खुशी ये किसी चीज की किसी बैसाखी की मोहताज नहीं है कि हाँ उसको कुछ लाठी का सहारा चाहिए किसी आनंद को कृष्ण को। तो हमारे जीवन में हम खुश होना चाहते हैं तो कोई परिस्थिति बाधक नहीं बन सकती, कोई व्यक्ति बाधक नहीं बन सकता। और जीवन में अगर हम खुश नहीं होना चाहते, हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। हमेशा खुश रहने का मतलब है कृष्णमय रहना, हमेशा कृष्णमय रहने का मतलब है जो भगवान ने हमारे को ज्ञान दिया है उसको हम अच्छी तरह समझे। और ये जो श्लोक है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए। हमारी सबसे बड़ी बीमारी यही है कि हम हमेशा ये चाहते, भगवान कह रहे हैं यथा इच्छा से तथा करो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो, हम तो कहते हैं जैसे मेरी इच्छा हो वैसे तुम करो। हमेशा आप परिवार में देखिए, पति पत्नी के ऊपर हुकूमत जमाना चाहते हैं, पत्नी चाहती है मेरे अनुसार से पति चले, पत्नी चाहती है मैं मंदिर जाऊं तभी तुम जा सकते हो, या इस प्रकार से भक्तों के बीच में समस्या रहती है। तो ये हमारे को ही इस प्रकार से दुख मिलेंगे। जो व्यक्ति जीवन में वर्तमान से खुश नहीं रह सकता वो कभी भी खुश नहीं हो सकता। प्रेजेंट में जो व्यक्ति खुश नहीं रह सकता, फ्यूचर में कामना में ऐसे होने पे मैं खुशी होऊंगा, ऐसे होने पे सुख होऊंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। माया का हमेशा यही चाहना है कि खुशी बस एक कदम दूर है, एक कदम और चलोगे फिर लगेगा बस एक कदम दूर है, फिर और कदम चलोगे, ऐसे ही हमेशा खुशी हमारे को तुम्हारे दूर जाती रहेगी। ऐसे गधे के ऊपर वो सामने रख दो डंडी के नीचे कैरेट गाजर, तो वो चलते अभी मैं करूंगा तो खा लूंगा, वो फिर एक कदम चलते तो गाजर भी एक कदम और आगे चली जाती है। हमारा यही हाल है, बस ऐसे माया नचा रही है। ये जैसे तुम्हारे लड़के ने बात में तुम खुश, जैसे तुम्हारे कमरे में रहने वाले भक्त ने तुम्हारी बात मानी तुम खुश, इससे खुशी नहीं मिलने वाली। खुशी मिलने मतलब है कृष्णमय होना। इनको बातों को अच्छी तरह समझना। हम सब लोग अपने कर्म के फल से इतने आसक्त होते हैं कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हमने जो करा है उसका फल जैसे हम चाहते हैं वैसे ही होना चाहिए। मैंने ये बात बोली है, कर्म का फल ये मत सोचना कि बिजनेस कर रहे हैं उसके पैसा, ये तो बहुत ही ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग है कर्म के फल की। तो मैंने ये बोला है कि ऐसे ही होना चाहिए, पति पत्नी में तुमने टेप यहाँ क्यों रख दिया, वो पति बोलता सर पे रखूं क्या, तो इसी प्रकार से बिना मतलब की लड़ाई हो जाती है। उधर मैंने बोला है मेरे हिसाब से टेप को वहां होना चाहिए था, मेरे को ठीक नहीं लगा, तो बस उसी बात पे युद्ध स्थली शुरू हो गई। ये गीता ज्ञान है, ये युद्ध स्थली पे दिया गया था, बैटल फील्ड के ऊपर। और बैटल फील्ड के ऊपर ज्ञान देने के बाद भी आपको हमको ये नहीं समझ आता कि कितनी इंपॉर्टेंस है, ये हमारे को समझ नहीं आता है बात, और ये हम नहीं समझते, इसलिए हमारा नॉर्मल जीवन भी युद्ध स्थली बन जाता है। ज्यादातर हमारे जीवन में संग्राम चल रहा होता है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे ब्रह्मचारी के कमरे के अंदर हो, हमारा जीवन युद्ध स्थली बना रहता है, नहीं समझते बात को। इसलिए अच्छी तरह समझेंगे तो वास्तव में हम खुश हो सकते हैं। ये बात कई लोग बोलते हैं कि भक्ति में रहकर सुख नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत है। भगवान की बात को काटना है। भगवान गीता में बता रहे हैं 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, राजगोयम राजविद्या राजगोयम पवित्र परम उत्तम प्रत्यक्ष आगमन धर्मम सुखम कर्तुम अव्ययम। ये अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है ये अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है, बहुत खुशी के साथ। भक्ति सही रूप से नहीं कर रहे होते इसलिए हम दुखी होते हैं। जब हम भक्ति को सही रूप से करना सीख जाएंगे दुखी नहीं होंगे। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है कि हम कई होते जब से मैं ऐसे कर रहा हूं तो दुखी, आप सही तरह समझ नहीं पा रहे हो इसलिए दुखी हो। और हम ये जो ग्रंथ पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ने का क्या उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है ग्रंथ किस लिए पढ़ते हैं? यहाँ सब लोग किताबें पढ़ते हैं, मन की ग्रंथियों को हटाना, ग्रंथ से निर्ग्रंथ होना, निर्ग्रंथ मतलब ग्रंथी गांठे अटैचमेंट, ग्रंथ से निर्ग्रंथ होना है, अटैचमेंट को हटाना है, ये उद्देश्य है। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं बस, रोज 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, पर अटैचमेंट वहीं की वहीं रहती है, कुछ भी हिलता नहीं है, कुछ भी नहीं हिलता। तो पढ़ रहे हैं तो हमें देखना चाहिए हमारे दिल की कितनी गांठें खुल रही है, हृदय की कितनी आसक्तियां खुल रही है। आसक्तियां वैसे की वैसी रहेंगी तो हम सही रूप से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। हम ये श्लोक कितनी बार ही पढ़, सब लोग जानते हैं, यथा इच्छा से तथा करो, कौन है जो नहीं जानता, सब जानते हैं पर मानते नहीं है, इनको मानना भी जीवन में शुरू करना चाहिए। कृष्णमय होने के लिए, खुश होने के लिए हमको उसी रास्ते से जाना होगा जिस रास्ते से सारे संत लोग गए हैं, सब महात्मा जन गए हैं, वी हैव टू गो थ्रू दैट पाथ द सेम स्टेप दे हैव गॉन थ्रू। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग इन विषयों में बहुत ही गाढ़ी थी, तब जाके बहुत आसान स्मूथ रहा स्पिरिचुअल, नहीं तो ये अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती तो बहुत कठिन रहता है आध्यात्मिक पथ पे चलना। जैसे मैंने बताया कर्म के फल से बड़े बड़े योगी जन भी आसक्त होते हैं, बड़े बड़े योगी कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारा जो हम जैसे बोले वैसा होना चाहिए, बड़े बड़े योगी जन भी इससे आसक्त होते हैं। तो सोचिए हम कितने आसक्त होंगे, कह सकते हैं हाँ मैं तो बिल्कुल भी अटैच नहीं अपने, हम कहीं को समझाने की कोशिश करते हैं नहीं मेरे को तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो कृष्ण पर डिपेंड है। वो तो जो बहुत मेहनत करते हैं वो भी नहीं हो पाते पूरे तरीके से इसमें, और हम सोचते हैं कि हमको कितने परिश्रम की आवश्यकता है इस बात को समझने के लिए। हमने बताया योगी भी बहुत बड़े योगी भी अटैच रहते हैं कर्म के फल से। कारण क्या होता है? कारण होता है हमारे चित्त, हमारे अंतःकरण जो पड़े हुए संस्कार, हमारे सबका चित्त होता है अंतःकरण, जैसे आप हार्ट कह लो, उसके ऊपर संस्कार होते हैं, जो हम चीजें चाहते हैं बारंबार उसके पीछे अटैच होते हैं, अटैचमेंट के कारण वो छाप पड़ जाती है हृदय में। जैसे व्यक्ति बहुत गुस्सेल है, क्यों है कि इतना गुस्सा करके आदत होगी वो छाप पड़ेगी, तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे स्विच ऑन नहीं हो जाएगी गुस्सा खत्म, ऐसा नहीं होगा, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खराब संस्कार जाएंगे नहीं जब तक, तब तक व्यक्ति बदल नहीं सकता। हम सब लोग जो भक्ति में क्यों कहा जा रहा है कि सब क्रियाएं करो, ये कभी बोला था श्रवण करो, कभी कीर्तन करो, कभी जप करो, कभी सेवा करो, कभी ड्यूटी वशी, क्यों बोले? संस्कार छपे हृदय से, जब संस्कार पॉजिटिव छप जाएंगे तो सारी गलत जो अहम जमाने की इच्छा ये सब कब जाएंगी ये सब चीजें। और जब हम भगवान के विषय में अच्छी तरह सुनेंगे तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि आपका जब भक्ति के नियमों का सही रूप से पालन करोगे, भगवान में आपकी आसक्ति बढ़ेगी, तो आपका जब भगवान के प्रति आपका लोभ बढ़ेगा, तो ये लोभ बढ़ना जो है ये लोभ आत्मा का विषय है, लोभ बढ़ना भगवान के विषय में। तो जब लोभ बढ़ेगा भगवत विषयों में तब ये संस्कार सीखे होंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं समझ पा रहे हैं? जब लोभ भक्ति के प्रति लोभ बढ़ेगा, कृष्ण के प्रति लोभ बढ़ेगा, तब हमारे जो जो बाकी संस्कार है फीके होंगे। तो हमको लोभ अर्जन करना है भक्ति के प्रति, तब ये चीजें फीकी होंगी। हम लोग क्या करते हैं, हमारा हमारा खुद का लोभ अभी नहीं है और हम क्या करते हैं, लोगों को बदलना चाहते हैं। लोगों का मतलब अपने परिवार को बदलना चाहते हैं, कोई व्यक्ति अपने रूममेट को बदलना चाहता है, यही करना चाहते हैं ना हमेशा, हम औरों को बदलना चाहते हैं। भक्ति का मतलब है कंट्रोलिंग वंस माइंड एंड सेंसेस, अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना। हम हमेशा क्या करना चाहते हैं, कंट्रोलिंग अदर्स माइंड एंड सेंसेस, चाहे हमारा पुत्र हो, हमारी पत्नी हो, हमारे हमारी माता पिता हो, हमारे दोस्त हो, हमारा रूममेट हो, हमारा ब्रह्मचारी आश्रम में कोई भी हो, तो हम औरों को हमेशा चेंज करना चाहते हैं। अरे औरों ये चेंज करने के लिए तो भगवान और महापुरुष शुद्ध भक्त आते हैं और वो थक के वापस चले जाते हैं। भगवान किस लिए आते हैं यहाँ पे, शुद्ध भक्त किस लिए आते हैं यहाँ पे, लोगों के चित्त को बदलने के लिए, और वो भी फेल होके चले जाते हैं, नहीं बदलते। तो हमारी क्या औकात है कि हम किसी को बदल दे कि ये ऐसे करें, और हम परफेक्ट भी नहीं है अभी, तो सबसे बड़ी बात ये है अभी तो हम परफेक्ट नहीं है। जो परफेक्ट व्यक्ति आते हैं भगवान उनके शुद्ध भक्त अवतरित होते हैं, वो भी आते हैं कोशिश करते हैं, पर ये नहीं कि सब चेंज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे हैं इससे यही सबूत है, कितनी बार हम शुद्ध भक्त आए हैं, भगवान आए हैं आके चले गए हैं, हम यहीं के यहीं हैं, हमारा चित्त नहीं बदलता। तो संस्कार बदलना बहुत इतना आसान कार्य नहीं है, हम लोगों को अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है, ना कि अपने घर वालों को, अपनी भाई को, अपनी बहन को, इसको कम दोस्त को, ये ठीक नहीं है। हम हमेशा यही कार्य में लगे रहते हैं, बस ये बदल जाए तो मैं खुश। हम सब खुश होना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, अपने आप को बदलना। करते क्या है, खुश होने के दूसरे को बदलना। तो अगर वो दूसरा बदल गया तो फिर आप कैसे खुश होगे बताओ, आपकी बात भी मान ले। अगर वो बदल भी जाता है, पहली बात तो व्यक्ति बदलेगा नहीं, ये तो कंफर्म है। सबके चित्त पे बहुत भयंकर संस्कार होते हैं, अगर वो बदल भी गया तो उससे आप कैसे खुश होगे। आपके पुत्र ने अगर आपकी बात मान ली तो उससे आपकी खुशी का क्या लेना देना है बताओ, ये माया है, हमेशा एक कदम दूर दिखाती है, बस ये होते ही तुम खुश हो जाओगे। कुछ होता ही खुश नहीं होने वाले हम, जब हम कृष्णमय नहीं होंगे। ये साइंस है, साइंस को हम अपनी अपनी फिलॉसफी नहीं है उसमें हम डाल सकते कि नहीं नहीं। कई बार लोग बोलते हैं बात तो आप सही बोल रहे हो, पर एक्चुअली ये प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं। आपको कहने का मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज और धर्म ये प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं है क्या? तो भगवान ने व्यर्थ की बातें की है गीता में, वो भी युद्धस्थली के ऊपर। ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये धर्म स्पिरिचुअल नॉलेज की बातें हम नहीं अनुकूल करते। ये क्या ये कौन ये क्यों बोल रहे हैं, हम इस बात क्यों सोचते हैं, सोचते ना ऐसा नहीं पति बने ऐसा थोड़ा होता है, एक्सपेक्टेशन तो रहती है। नर आशा ही निराशा का कारण बनती है हमेशा, हमारी लोगों से आशा रहती है यहाँ पे ये मेरी बात मान ले, हमेशा यही जब ये मेरी बात मान ले। हम कृष्ण की बात ना माने पर सारे लोग हमारी बात मानते रहे, बस प्रभुत्व जो आते रहते हैं हम लोग हमेशा। हमको अपने आप को बदलना है, कृष्ण भक्ति में आए हैं इसका एक ही मतलब है, कृष्ण भक्ति में वही आते हैं जो मानते हैं कि मैं गलत हूं और मुझे अपने आप को बदलना है। अगर आपको अपने आप को नहीं बदलना तो खुश नहीं हो सकते, इस स्थिति में तो आप अरबों जन्म से हो, खुश थोड़ना है हम अभी, खुश होना है तो अपने आप को हमें बदलना चाहिए। हमारे ये भी हम नियम बनाते हैं, हम बहुत सारी चीजें सुनेंगे, बहुत कुछ लेक्चर वगैरह सुनेंगे, नियम ये हम लोग रिचुअल के अंदर बंद के रह जाते हैं। फिर ये स्पिरिचुअल लाइफ में इससे कोई महत्व नहीं है कि आपने कितना सुना हुआ है, इससे कोई महत्व नहीं है, कितना बुना है अंदर वो चीज का मेन महत्व है। आप सुनते रहो, नहाते रहो, कड़छी को नहराते रहो, तो कोई इससे ये नहीं कि उसको टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर कितना गया है, अंदर नहीं जा रहा तो फायदा नहीं है, फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी ना। कितना सुना है उससे मतलब नहीं, कितना बोल रहे हैं हम हृदय में अंदर से, आनंद के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है कहीं पे भी। हम लोग हमेशा आनंद परिस्थिति में किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में ही ढूंढते हैं आनंद को, बस इससे मेरे को खुशी मिलेगी, इससे व्यक्ति से किसी से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पहली बात तो चेंज कोई नहीं होगा, दूसरी अगर हो भी गया तो भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके चेंज होने से आपकी खुशी का कोई रिलेशन है ही नहीं। अब हर एक को देखिएगा, हो जाऊंगा मेरे लड़के की शादी हो जाए तो खुश हो जाते, उसके बाद क्या होता है, कितने लड़कों की, कितने लोगों के लड़कों की शादी होती है, खुश हो जाते, पोते का मुंह देख लो, अरे भाई उसको कितनों ने देखा, देखो कितने खुश है, ऐसा नहीं होता। कई बार देखा जाता है कि कई बार ऐसे इंटरव्यू लिया गया था एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन ने, और पूछा गया कि कितने लोग जीवन में कोई प्लान बना के चलते हैं, जीवन में कोई कुछ प्लानिंग करके चलते हैं, तो पता चला कि 94% लोग जीवन में कोई भी प्लान नहीं बना के चलते, 94%। केवल 6% लोग जीवन में कुछ प्लान बना के चलते हैं, और 6% जो प्लान बनाते हैं, क्या प्लान होना है कि मेरे लड़के की शादी कैसे हो जाए, मैं घर कैसे बना लूं, बस ये प्लानिंग होती है 6% में। तो जो व्यक्ति जीवन में कोई प्लान बना के भी नहीं चलता, वो खुश कैसे हो सकता है बताइए, आपका प्लान ही नहीं है कृष्णमय होने का पूर्ण रूप से, तो आप कैसे आनंदमय हो सकते हैं जीवन में, प्लानिंग ही नहीं है कोई भी, जब प्लान ही नहीं बनाएंगे तो सफल कैसे होंगे। हमारे को अच्छी तरह प्लानिंग करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि हम लोग यही सोचते हैं ये कार्य हो जाएगा तो मैं खुश होऊंगा, बस देन वी रॉब ourselves फॉर द sheer bliss ऑफ परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। जो अगर हम सोचते हैं कि ये करके मैं खुश होऊंगा, तो जो कार्य है करने के अंदर जो खुशी होती है उससे हम अपने आप को वी रॉब ourselves वंचित कर लेते हैं, वी रॉब ourselves फॉर द sheer joy ऑफ परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। पता नहीं कैसे एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि ये इतने वन हैज टू फील इट, यू नो। भक्ति का मतलब है कि जर्नी इज एज गुड एज डेस्टिनेशन, कितनी बार हमने चर्चा हुई है, जर्नी एंड डेस्टिनेशन। हम सोच रहे हैं भक्ति के अलावा, भक्ति भी जब कर रहे होते हैं कि जो ये मैं कर रहा हूं अगर इससे मुझे ये मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, वी आर थिंकिंग अवर सेल्फ, वी आर ऑलवेज थिंकिंग अवर द डेस्टिनेशन व्हाइल गोइंग थ्रू द जर्नी। सोचते हैं आनंद मिलेगा ये करने के बाद, ये गलती है, ये एक्टिविटी से आनंद मिल सकता है इफ यू आर परफॉर्मिंग फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। अगर भगवान खुशी के लिए कार्य करेंगे तो इसी क्रिया से हमें आनंद मिले, खुशी मिलेगी। देन अवर जर्नी एंड डेस्टिनेशन, अवर डेस्टिनेशन इज नॉट आनंद, देन अवर जर्नी बिकम्स आनंद, हैप्पीनेस, देन वी डोंट रॉब अवर सेल्फ फ्रॉम द शीयर जॉय ऑफ द एक्टिविटी, परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। हमेशा याद है, क्वेश्चन आ जाता है, जो एक्टिविटी है दैट इज एज गुड एज डेस्टिनेशन। वाई? डेस्टिनेशन इज आनंद, खुशी, एंड एक्टिविटी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं वो भी आनंद है, क्योंकि हम ये नहीं कर रहे होते इसी वजह से सारी दिक्कत आती है, समस्या आती है। ये 247 और ये 1863 इनकी काफी गहराई है, तो हमें जाना पड़ेगा। आप सब लोग 12वें अध्याय में भी पढ़ते हैं कि भगवान कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ है कि मान मुझ में लगा दो, नहीं कर सकते तो ये करो वो करो वगैरह वगैरह। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है, आपकी जो एक्टिविटी हो दैट शुड बी एन ऑफरिंग टू मी। जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, भगवान गीता 12वें अध्याय में यही बोल रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ मान मुझ में लगाओ, मेरी बात मानो, तो भगवान जो एक्टिविटी दैट इज फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। नहीं कर सकते क्या कि अच्छा ये कर रहे हो ना इसका फल मुझे अर्पण कर दो, ये कर रहे हो इसका फल मुझे अर्पण कर दो वगैरह वगैरह, तो श्रेष्ठ नहीं है वो कार्य। हमारे ये 247 यही बता रहा है कि श्रेष्ठ कार्य क्या है, श्रेष्ठ कार्य है कि एक्टिविटी शुड बी फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, डायरेक्ट ऑफरिंग होना, यानी कि एक्टिविटी करके ऑफरिंग करें, वो इन्फीरियर क्वालिटी है। सुपीरियर क्या है, एक्टिविटी शुड बी फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, दैट इज डेस्टिनेशन। ऐसे कि वी डू सम एक्ट एंड देन वी ऑफर द रिजल्ट टू द फॉर द प्लेजर ऑफ द, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीजें अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो हम दुखी रहेंगे। हम प्रचार करते हैं, प्रचार करने में हमारा क्या होता है, ये व्यक्ति मेरी बात माने, जबकि भगवान भी प्रचार कर रहे हैं, भगवान ये नहीं बोल रहे मेरी बात मानो, भगवान कह रहे यथा इच्छा से तथा करो, तो मेरी बात अच्छी तरह सुनो, डिलीबरेट ऑन दिस फुली, विमृश्य एतद् अशेषेन, इसको अच्छी तरह इसके ऊपर चिंतन करो, मनन करो। हम क्या कहते हैं, मैंने जो बोला है उस पर चिंतन भी मत करो, जो कहता हूं तुरंत मान लो मेरी बात, चाहे पति पत्नी को बोले, पत्नी पति को बोले, ब्रह्मचर्य आश्रम एक लड़का दूसरे को बोले, जो मैंने बोला उसे मान लो, बस यही परम सत्य है। हम कहते हैं परम सत्य तो है, फिर भी तुम थोड़ी तुम्हारी इच्छा हो तो मानना। हम जब प्रचार करते हैं, प्रचार को छोड़ो कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो इतने आसक्त होते हैं। अच्छा देना पानी देना, उसने ही दिया, सुनाई नहीं देता, पानी देना बोला था। इतने आसक्त होते हैं अपने, हम अटैच होते हैं अपने फल से, जैसे बोला वो पूरा होना है। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, बस जो बोला वो करो। मैं भगवान हूँ, आम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ मेरे से ही होता है, जैसे सब जीव भगवान बन जाते हैं। और ये हमारी आदत क्या है, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, लेना लेना, हम हमेशा सबसे लेना चाहते हैं। तो लेना लेना जो व्यक्ति होगा संसार में, सभी एक दूसरे से लेना चाहते हैं, इसलिए संसार में कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से प्रेम हो ही नहीं सकता। माँ बेटे से लेना चाहती है, बेटा माँ से, पति पत्नी से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, हर कोई कुछ लेना चाहता है। तो जैसे ही स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो लड़ाई हो जाएगी। इसलिए संसार में कोई खुश हो नहीं सकता, हम देना देना जानते ही नहीं है। देना देना है प्रेम खुशी, जब लेना लेना चाहेंगे तो फ्रस्ट्रेशन तो आते ही रहेंगे हर पद पे, हर पद पे। तो ये हमारे को सीखना है देना देना। दैट एक्टिविटी शुड बी फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, देना, भगवान की प्रसन्नता के सारे कार्य करना। हम लोग लेना चाहते हैं कि ये व्यक्ति को मैं ऐसे तिगड़मबाजी करके समझा दूं, चाहे भक्त हो, ताकि ये कर दे। हम भूल जाते हैं, हम सेवा कर रहे होते हैं, क्रोध करना शुरू कर देते हैं। काम पूरा, काम पूरा के लिए नहीं कर रहे थे सेवा, आप सेवा कर रहे थे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये बात तो क्यों भूल रहे हैं, सेवा किस लिए करते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हम बीच में देखते हैं आर्गुमेंट्स होती है, काफी डिवोटेड आर्गुमेंट्स करते हैं वगैरह, ये ठीक नहीं है, क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता उसमें चली गई। आपका ये ये डिफीटेड योर ओन पर्पस, क्या पर्पस था, कृष्ण प्रसन्न होंगे और हमारे पर कृपा होगी। पर जब हम सेवा करते भी क्रोध करते हैं कि तिगड़मबाजी करते हैं घुमाना फिराना, तो कृष्ण कृपा से वंचित हो जाते हैं, आनंद से वंचित हो जाते हैं। काम पूरा हो सकता है, जीत सकते हो, पर जीत के भी हार जाते हैं। तो कई बार हम हार जाते हैं पर हार के भी जीते, क्यों, क्योंकि इसमें कृष्ण प्रसन्न है। जब कृष्ण प्रसन्न है तो आप आनंदमय अवस्था में रहोगे। हमने काम निकालना नहीं है जिंदगी का उद्देश्य, चाहे भक्ति के अंदर, चाहे मंदिर के अंदर रह रहे हो, चाहे मंदिर के बाहर, काम निकालने किस तरह, ये नहीं है जीवन का उद्देश्य। कृष्ण प्रसन्न हो हमारी क्रिया से, हमारी एक्टिविटी से। हम भक्ति में भी यही देखते हैं, ऐसा रहता है बहुत। भागवतम के 11वें स्कंध में दरिद्र व्यक्ति की परिभाषा बताई गई है। दरिद्र व्यक्ति वो होता है, वन हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद इन हिज लाइफ विद हिमसेल्फ, जो संतुष्ट नहीं होता ऐसा व्यक्ति दरिद्र है। जो संतुष्ट, वन हु इज नॉट सेटिस्फाइड, वो व्यक्ति दरिद्र होता है, 11वें स्कंध में बताया गया। तो हम लोग हमेशा ये समझ, ये हो जाएगा तो मैं खुश होऊंगा, तो हमेशा हम दरिद्र बने रहते हैं, भिखारी नहीं। ये जो भगवान की प्रसन्नता के कार्य करते हैं, इसी में आनंद है, इस बात को फील करेंगे तो हम ये बात को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा डेस्टिनेशन से अटैच होते हैं, हमेशा फल से। तो हम भगवान की प्रसन्नता ना प्रसन्नता कोई लेना देना ही नहीं है। श्री कारण भक्ति रहे होते हैं तथा कथित, पर उसमें भी हमारा होता है कि ये जैसे मैं चाहता हूँ वो हो जाए तो बस ठीक होगा, ऐसा होता नहीं है असलियत में। और कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी, आप जानते नहीं हो, जब घर में रहते हैं ना हम पति पत्नी, मतलब होता है क्या चाहते हैं, वो ये बातें होती है, हम फैमिली से बात करते हैं। फिर जब हम ब्रह्मचारी से बात करते हैं, समझते रूम में रहते हैं साथ में ना, तो ये सब की बीमारियां हैं, ये नहीं समझते हमारे अंतःकरण की बीमारी है ये। कुत्ते को कहीं पे भी रखो वो भौंकेगा, व्यक्ति बदलेगा नहीं ना। तो चेत में जैसे संस्कार है वो व्यक्ति बदलेगा नहीं, चाहे परिवार के अंदर रहो चाहे मंदिर के अंदर रहो। तुम्हारे चित्त पे ये संस्कार है, फल से अटैच है हम लोग। तो ये पति पत्नी के साथ हो या बच्चों के साथ, माँ बाप हो चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में लड़के हो, ये सब गलत फहमी है। तो परिवार से आता, परिवार के अंदर हम चाहते सब लोग मेरी बात माने, कि ये बीमारी हम भक्तों के साथ है तो भी यही चलती रहती है, आर्गुमेंट भक्तों से भी फिर होते हैं। जो व्यक्ति ठीक है वो कहीं पर भी ठीक रहेगा, परिस्थिति जन्य नहीं है किसी की क्रिया, भक्त की क्रिया। परिस्थिति तो हमेशा ही ऐसी, कोई हमारी बात मानेगा ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति किस लिए आया संसार में, अपनी अनफुलफिल डिजायर को पूरा करने के लिए आया है। तो आपकी बात मानने के लिए तो आया ही नहीं, चाहे मंदिर के अंदर रहते हो आप, चाहे बाहर रहते हो आप, कहीं पे भी रहते हो। हम चाहते सब मेरी बात माने, मेरे बच्चे मेरी बात माने, बस मेरी पत्नी को मेरी बात माननी चाहिए, मेरे कमरे के अंदर जो भक्त रहते हैं उनको मेरी बात माननी चाहिए। बस यही यही चीजें करके हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या करना है, फ्रॉम एक्शन वी हैव टू कम टू एक्सीलेंस। 247 का यही मतलब है, दैट इज नॉट मेयर एक्शन, दैट इज एक्सीलेंस। वो अपने आप में सिद्धि है, कार्य करना बिना फल की आसक्ति के। इट इज द डायरेक्ट ऑफरिंग, दैट एक्शन इज फॉर द प्लेयर ऑफ द लॉर्ड। और आप सोच नहीं सकते हम इस तरह से कार्य करते हैं तो द पावर ऑफ दैट एक्शन इज माइंड बॉगलिंग। जब ये फल की आसक्ति से हटा हुआ कार्य होता है तो इसकी जो शक्ति होती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्यों कल्पना नहीं की जा सकती? क्योंकि आपको बताते हैं, जैसे आप प्रचार करते हैं, आप किसी को, जैसे अभी आप लोग कुछ गाइड बने हैं या कोई वैसे लेक्चर वगैरह देते हैं, प्रीचर्स हैं यहाँ पे काफी सारे लोग ज्यादातर, तो आप लोग जब प्रचार करते हो तो ये चाहते हो कि व्यक्ति मेरी बात माने। तो ये जब हम इस प्रकार की कॉन्शियसनेस जब हम प्रचार करते हैं तो हमारे से एक अजीब प्रकार की दुर्गंध निकलती है। फिर वो जो ताजगी होती है वो चली जाती है, दूसरा व्यक्ति दैट पर्सन कैन स्मेल दिस थिंग कि ये चाहता कि मैं इसकी बात मानू, दैट पर्सन कैन स्मेल इमीडिएटली। जिसको आप प्रचार कर रहे हो उसको सुगंध आ जाती है, ये चाहता है, उसको समझ आ जाती है ये चाहता है कि मैं इसकी बात मानू, ये नहीं चाहता ये भगवान की बात मानी। वो व्यक्ति को पता चल जाए, भले बोलेगा नहीं मुंह पे, वो पता चल जाता है। होता क्या है फिर, वो प्रीचिंग सक्सेसफुल नहीं होती है। परंतु अगर हम बिना फल के आसक्ति के जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड बोलते हैं, प्रचार करते हैं, तो वो शब्दों में कृष्ण होते हैं। तो ये शब्द होते हैं वो इतने शक्तिशाली हो जाते हैं, तो कृष्ण उनमें है। तो प्रविष्ट करण रंध्रेन, भगवान कानों के माध्यम से दूसरे के हृदय में अंदर चले जाते हैं, तब व्यक्ति बदलता है, क्योंकि शब्दों में कृष्ण होते हैं। जब भी व्यक्ति हम प्रचार करते हैं हमारे को अपने ऊपर अहंकार होते हैं, मैंने बोला तो बदला, ये बेवकूफी है। प्रविष्ट करण रंध्रेन, भगवान कानों के माध्यम से जब अंदर जाते हैं तो व्यक्ति बदलता है। केवल कृष्ण ही बदलते हैं किसी को भी, आप या हमारे शब्द नहीं बदलते, शब्दों से भगवान, शब्दों से कोई नहीं बदलता, कृष्ण की वजह से व्यक्ति बदलता है। तो जब हम इस तरीके से बोलते हैं कि फल से बिना आसक्त हो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उन शब्दों में कृष्ण प्रवेश कर जाते हैं और फिर वो जो शब्द किसी के हृदय जाते हैं वो बदलते हैं। इससे हम अहंकार से भी निवृत्त हो सकते हैं कि मैंने प्रचार किया, आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ भगवान की बात से इतना समझे हो कि उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। बदला कृष्ण नहीं है, कृष्ण कथा नहीं बदला है, कोई जीव किसी को नहीं बदल सकता, भगवान ही बदलते हैं, भगवान परम पवित्र हैं। तो एज इट इज अगर परम पवित्र चले जाएंगे तो बदल देंगे, हम उनके साथ अपनी अपनी इच्छाओं को मिश्रित ना करें, तभी व्यक्ति नहीं बदलता साथ में रहते हुए। तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करेंगे तो बहुत शक्तिशाली कार्य होंगे, नहीं तो एक अजीब सी दुर्गंध सी रहेगी हमारे हमारे आसपास। तो हम लोग कहते हैं वी वर्क फॉर फन, हम लोग हम खुशी के लिए कोई भी कार्य करते हैं। जब बिजनेस बंद व्यक्ति कर रहा है तो पैसा आएगा तो खुश होगा, यानी कि बिजनेस का जो करने का माध्यम है वो खुश हो रहा है। जब हम इस प्रकार से इस चेतना में रहेंगे, जैसे हम प्रचार या कोई भी कार्य करें तो वर्क बिकम्स फन, ऐसा नहीं कि होने के बाद जो होगा उससे खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं है। वर्क बिकम्स फन, वर्क बिकम्स हैप्पीनेस, वर्क बिकम्स ब्लिस। ये करूंगा तो क्या होगा, ऐसा मुझे बोला गया, तो ये हम फिर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं सीधा हमेशा। ये सब हमारे माइंड का गेम है, सब कुछ माइंडसेट जो हमारा है, सब वो कुछ भी नहीं है, सब सिर्फ माइंडसेट। कार्य वही करने हैं, करना वही हरे कृष्ण है, रीडिंग वही करना है, सेवा वही करना है, तो ये माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना है हमें। ये नहीं करेंगे तो बस कड़की की तरह रहेंगे हमेशा। एक्चुअली अवर माइंड इज अवर ओन प्रिजन, ये माइंड हमारा खुद का बनाया हुआ जेल है, वही जेल में ही घूमते रहते हैं बस। लिमिटेड कंसेप्शन, ऐसे ही होना चाहिए। तो हमने सबके कंसेप्ट है ना अपने अपने, ये सबके जेल है अपने अपने, सब हम अपने बनाए हुए जेल में घूमते रहते हैं और क्या सोचते हैं ये परिस्थिति, किस परिस्थिति में आऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, मतलब एक जेल से दूसरे जेल में आ जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। जेल में व्यक्ति खुश नहीं हो सकता। तो अपने जो हमने कंसेप्शन बनाए हुए हैं इसको हमें हटाना है, तोड़ना है। ठीक है, तो अभी हम लोग, ये तो अनंत है टॉपिक, तो अभी इसको हम लोग विराम देंगे। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? बिल्कुल।